الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور اس میں جو آیت ابھی تلاوت کی گئی آیت نمبر 76 اور 77، تو اس کے معروف مسائل ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 511 سے. تو پچھلی جو مجلس تھی جو جمعے کو اب ہوتی ہے جس میں ہم اس سورت کی تفسیر ہی کو پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس میں شروع کے پیراگرافس 511 صفحہ کے پڑھ لیے تھے، تو آگے پڑھ لیتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس مجلس سے بھی اس کو فالو کر رہی ہوں گی. جمعے والی مجلس پڑھنا، اس کی ریکارڈنگ تو گروپ پہ پوسٹ کر دی جاتی ہے. تو اس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ اور اس آیت کا مصداق، یعنی مصداق کیا ہوتا ہے کہ جس واقعے کے اوپر یہ صادق آتی ہے، یعنی جو اس کا شان نزول ہے اس آیت کا، کہ جس واقعے کی وجہ سے یا جس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کو پھر شان نزول بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو اس کا مصداق بھی کہہ سکتے ہیں. ٹیکنیکل ورڈ جو ہے وہ شان نزول ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق ایک دوسرا واقعہ بتلایا ہے، ٹھیک ہے، جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا اور اس سورت کا اس کے لیے قوی قرینہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جو واقعہ آپ بیان کیا تھا نا کہ یہود مدینہ ایک روز نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملک شام میں جا کر رہیں، کیونکہ ملک شام ہی محشر کی زمین ہے، یعنی جو محشر برپا ہوگا وہ ملک شام کے اندر برپا ہوگا. یعنی یہ بالکل جو ملک شام کا ایریا ہے، یہ گویا کہ پورے کے پورے زمین کا جو ہے نا یہ سینٹر ہے. ہمارے نزدیک جو ہے وہ جو جو حجاز ہے وہ زیادہ اہم ہے، لیکن بنی اسرائیل کے نزدیک تو جو شام کا ملک ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک بلکہ ہمارے جو جو دلائل ملتے ہیں تو جو قیام جو جو میدان حشر ہوگا وہ عرفات کی زمین ہوگی، میدان عرفات ہوگا. اسی کو لمبا چوڑا کھینچ تان کر کے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ساری انسانیت جو ہے، بلکہ ساری انسانیت ہی نہیں، سب کچھ ہی اس کے اوپر سما جائے گا. وہیں پہ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے اور وہیں پہ پھر حساب کتاب ہوگا. جانوروں کا بھی تو حساب کتاب ہوگا نا، خالی انسانوں کا کوئی تھوڑی ہوگا، جنوں کا بھی ہوگا، جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا. یہ اور بات ہے کہ جانوروں کو جہنم میں یا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن حساب کتاب تو ہوگا نا. تو سب کو جو ہے نا وہ میدان عرفات کے اندر ہو جائے گا. لیکن ان کے نزدیک، ظاہر ہے ان کے نزدیک پھر چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی گئی تھی، ہمارے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال، تو اس واقعے سے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا جمعے کی مجلس میں، وہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے، جبکہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے. ٹھیک ہے نا، اور شروع بھی کہاں سے ہوئی؟ معراج کے واقعے سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے، بلکہ ویسے تو اتنی بڑی صورتوں کے اندر جو ہے وہ مختلف، یا پوری پوری صورت کے بارے میں ایک حکم تو لگا دیا جاتا ہے، لیکن درمیان کی جو آیات ہوتی ہیں ان کے الگ الگ حکم بھی ہوتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے وغیرہ. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کا مکی ہونا اس کے لیے قوی قرینہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، مدینہ منورہ میں پیش نہیں آیا تھا جیسے کہ پیچھے لکھا ہے، تو اس کا تو جب ہی ناقابل اطمینان قرار دیا گیا نا. اب یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ اگر کسی کے سامنے کتاب نہیں ہے یا وہ کتاب کے صفحے کو سکرین کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے سر پہ سے گزر رہی ہوں گی یہ بات. ठीक है ना, अगर आप जो है वो किसी और से बातें कर रही हैं, कहीं पे चैटिंग कर रही हैं, या जो है वो किचन का काम कर रही हैं, ठीक है, तो फिर आपके सर पे से गुजर जाएंगी। किताब के सफ़े को सामने रखें, उसको देखते रहें गौर से, तब आपको बातें समझ में आएंगी। औरतों के लिए तो वैसे भी ज़रा आसान होता है फोकस करना, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हल जो है ना वो मर्दों को बताया। मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल होता है फोकस करना जब तक तो उनके सामने कोई चीज ना हो। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया ना मर्दों के दिमाग को और औरतों के दिमाग को मुख्तलिफ बनाया। तो एक साहब हमसे ये कहने लगे कि मुझे समझ में नहीं आती बात, मैं इस तरह से जब सुनता हूँ या रिकॉर्डिंग सुनता हूँ मुझे बात समझ में नहीं आती। तो हमने उनको मशवरा दिया कि आप किताब के सफ़े के ऊपर फोकस करके सुना करें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस पे अमल किया और उनका जवाब आया कि वाकई अब मुझे बात समझ में आ रही है, राइट। तो अगर मर्दों को बात इस तरह से समझ में आ सकती है, तो औरतों को तो और भी ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि औरतों के लिए फोकस करना मर्दों के निस्बत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। बहरा तो ये जो वाकया है ना जो कि अब बयान करने में कम करूं मैं पेश आया, इस सूरत का मक्की होना उसके लिए कवी करीना है, ठीक है। यानी ज्यादा दलील मिलती है हमें इस बात से कि ये सूरत भी मक्की सूरत है, तो वाकया भी मक्की होगा। और वो वाकया ये है कि एक मरतबा कुफार कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकालने का इरादा किया, उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, ठीक है। यानी उन्होंने बहुत सारे इरादे किए थे, कत्ल कर देने का भी इरादा किया था उन्होंने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को अजियत देने का, सोशल बायकॉट करने का इरादा किया, और रिश्वत देने का इरादा किया, धमकियां देने का इरादा किया, तो एक वक्त उन्होंने निकाल देने का भी इरादा किया, ठीक है। तो उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, व इन कादू लयस्तफिज़ूनका, कि बेशक ये तदबीर कर रही हैं कि आपको इस जमीन से उखाड़ दें, ठीक है। कता कर देने का मतलब होता है इस्तफज़ा या यस्तफिज़ू का मतलब कता कर देना, काट देना। तो जमीन से काट देने का मतलब होगा जमीन से उखाड़ देना, यानी बेदखल कर देना, एग्जाइल कर देना। और इसमें कुफारे मक्का को इस पर तंबीह फरमाई कि अगर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देंगे तो फिर खुद भी मक्का मुकरमा में देर तक चैन से ना बैठ सकेंगे, चंद दिन मजे करेंगे लेकिन ज्यादा लंबा मजा नहीं कर सकेंगे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने इसी वाकये का मिस्ताक आयत होना राजेह करार दिया है। राजेह यानी इसको प्रिफर किया उन्होंने, इसको तरजीह दी है। राजेह का लफ्ज तरजीह से निकला, तरजीह का मतलब किसी चीज को प्रिफर करना, जब दो ऑप्शन मौजूद हों तो आप उनमें से एक को प्रिफर करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर बताया कि कुरान करीम की ये वईद भी कुफार मक्का ने खुली आंखों देख ली, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई तो मक्का वाले एक दिन भी मक्का में चैन से नहीं बैठ सके। चैन से बैठना ये ज्यादा अहम होता है, वरना बैठे तो 2 साल तक तो आराम चैन तो बैठे लेकिन चैन से नहीं बैठे, बेचैन रहे, ठीक है। तो ये बेचैनी जो होती है ना ये सजा होती है नबी की मुखालफत की या नबी की सुन्नतों की मुखालफत की, सजा भी बेचैनी होती है। हम नबी की मुखालफत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मुखालफत करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेचैनी की वजह है कि हम सुन्नतों की मुखालफत करते हैं। तो मक्का वाले भी एक दिन भी मक्का में चैन से नहीं बैठ सके। सिर्फ 1.5 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको मैदान बदर में जमा कर दिया, जहां उनके 70 सरदार मारे गए और उनकी कुव्वत टूट गई। यानी लिटरली मक्का मुकरमा में सफे मातम बिछ गई थी बदर के बाद। और उसके बाद जो है ना इन लोगों ने अपने नाच गाने और जो जो इस किस्म की जो यानी जो मेले ठेले होते थे ना ये खत्म कर दिए थे इन्होंने मक्का मुकरमा वालों ने, जब ये अपने 70 सरदारों को बदर में मरवा करके वापस आए, ठीक है। और इनकी कुव्वत टूट गई। फिर गजवा उहद के आखिरी नतीजे में उन पर मजीद हैबतदारी हो गई और गजवा अहजाब के आखिरी मार्के ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी। और हिजरत के 8वें साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मक्का मुकर्रमा फतह कर लिया, ठीक है। इस तरह से तदरीजन काम होते हैं, ठीक ठीक है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि बदर में उनकी कमर टूट गई, अब जो है वो मक्का यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हमला कर दिया और जो है वो मक्का मुकरमा नबी अलैहिस्सलाम के कब्जे में आ गया, क्योंकि उनकी कमर तो बदर में टूट गई थी। ऐसा नहीं हुआ ना, ठीक है ना, तदरीजन हुआ, ग्रेजुअली हुआ, ज्यादा कमर बदर में टूटी, फिर बाकी कमर जो थी वो उहद में टूटी, फिर जो थोड़ी सी रह गई थी वो अहज़ाब में टूटी, लेकिन फिर भी इतनी उनके अंदर जुर्रत बाकी रही कि हुदैबिया के मौके पर, जो कि 6 हिजरी में पेश आया, राइट, जो कि गजवा अहजाब के बाद पेश आया, तो उसमें भी जो है वो चढ़ चढ़ करके बोल रहे थे और अपनी मर्जी की जो है वो शर्तें मनवा ली नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो उस वक्त तक भी जो है ना उनके अंदर इतना दमखम बाकी था कि वो नबी अलैहिस्सलाम से चढ़ करके बात कर रहे थे, आपस में उनको उमरा नहीं करने दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम को जो कामयाबी मिली है, ये इतने सालों में तदरीजन मिली है, तो फिर हमारा क्या मामला होना चाहिए, ठीक है। तो हमें भी तो फिर अगर हम नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते पे अमल करेंगे तो हम भी तो तदरीजन ही फिर हमें कामयाबी मिलेगी ना, एकदम से तो नहीं मिल जाएगी। और जाहिर है हमारा मामला जो है वो तो नबी अलैहिस्सलाम के तकवा और आपस के ईमान के मुकाबले में जितना कम है, तो अगर हम प्योर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि आपसे सरम का अगर 1 करोड़ गुना बड़ा मामला था और हमारा जो है वो सिर्फ 1 गुना अच्छा मामला है, तो हमें तो करोड़ साल लगने चाहिए कामयाबी के अंदर, लेकिन होता ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की मदद फिर भी मिल जाती है। और चलो करोड़ यानी एक एक साल तो नहीं लगता, लेकिन हमें कुछ दर्जनों सालों के अंदर हमें कामयाबी मिल जाती है, 8 साल में नहीं मिलती। नबी अलैहिस्सलाम को तो 8 साल के अंदर दुनियावी कामयाबी मिल गई ना, तो हमें 8 में नहीं मिलेगी, हमें 80 में मिल जाएगी। और लगता ऐसा ही है कि हमें जो है ना वो कुछ 80-80 साल के अंदर कुछ कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा हमारा और नबी अलैहिस्सलाम का अगर तकाबुल किया जाए तो बहुत ज्यादा फर्क होता है हमारे आपसे के मामले में। बहरहाल, तो तदरीजन उनको भी मिली, तदरीजन हमें भी मिलेगी, और बाकी तफसील अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने सालों में मिलेगी। अच्छा, सुन्नता मन कद अरसलना, ये सुन्नत है। सुन्नत किसको कहते हैं? आदत को कहते हैं। सुन्नत वो चीज होती है जो कि यानी रिपीटेडली की जाती है, रिपीटेटिवली की जाती है, ठीक है। इसलिए उर्दू जुबान में इसके लिए आदत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ठीक है। अल्लाह ताला की जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत होती है, जो नबी अलैहिस्सलाम की आदात मुबारक थी, उसी तरह किसी की भी सुन्नत हो सकती है। काफिर की सुन्नत भी होती है, जो काफिर आदतन कोई काम करता है ना, तो वो काफिर की सुन्नत कहलाती है। अल्लाह ताला ने आदतन कोई काम किया तो उसको अल्लाह ताला की सुन्नत कहा जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन कोई किताब उस्ताद के बगैर नाजिल नहीं फरमाई, ठीक है। तो ये अल्लाह की सुन्नत बन गई कि किताब तो भेजते हैं लेकिन साथ साथ टीचर भी भेजते हैं, ठीक है। इसके बरक्स दूसरी सुन्नत क्या क्या बनी कि बहुत सारे टीचर ऐसे भेजे जिनकी अपनी कोई मुस्तकिल किताब नहीं थी, बल्कि वो पीछे वाले टीचर्स की किताब को ही समझा रहे थे, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत बन गई, ठीक है, कि किताब बगैर टीचर के नहीं लेकिन टीचर बगैर किताब के, तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत बन गई। उसी तरह अल्लाह ताला की और भी बहुत सारी सुन्नतें हैं, जैसे कि यहां पर भी एक सुन्नत का जिक्र हो रहा है। इस आयत में बताया गया कि अल्लाह ताला की आम सुन्नत और कायदा पहले से यही चला आ रहा आया है कि जब कोई कौम अपने नबी को उसके वतन से निकालती या निकालने पर मजबूर करती है, तो फिर वो कौम भी वहां बाकी नहीं रखी जाती, उस पर खुदा ताला का अजाब आता है, ठीक है। कौम नूह अलैहिस्सलाम के साथ कि उन्होंने भी नूह अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश करी, उनको भी जो है वो बेदखल करना, जो भी उन्होंने हरकतें करी, तो उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया और पूरी की पूरी कौम जो है ना वो जमीन से नीचे पहुंचा दी गई, और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कश्ती के ऊपर सवार करके उस अजाब से बचा लिए गए, और फिर वो वहीं पर सेटल हो गए, दोबारा से वो जमीन के अंदर ही सेटल हो गए। उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सबको पता है, कौम सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया भी पता है, कौम हुद हूद अलैहि सलाम का वाकया भी पता है, और कौम शुएब अलैहि सलाम का, कौम लूत अलैहि सलाम का, ये बड़े बड़े वाकयात हैं। लेकिन सिर्फ यही वाकयात नहीं है, बल्कि इस तरह के छोटे वाकयात और भी बेशुमार ऐसे होते गए, ठीक है, जिसका कि हमें पता भी नहीं। अब अल्लाह ताला हर कौम के, हर नबी के वाकये को अगर कुरान मजीद में जिक्र कर देते तो फिर तो वो कुरान मजीद म्यूजियम में ही पड़ा होता और हम शायद उसको देखना भी गवारा ना करते। ये तो इतनी मोटी किताब है, हम तो, हमारे पास तो अगर इसी को देखते रहेंगे तो फिर हम खाएंगे कैसे। वो तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि अपने कलाम को मुख्तसर किया, तो जो हमारे नेक लोग होते हैं वो ना सिर्फ देखते हैं बल्कि पढ़ते भी हैं, और बल्कि याद भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई कौम अपने नबी को उसके वतन से निकालती है, निकालने मजबूर करती, तो फिर वो कौम भी वहां बाकी नहीं रहती, उस पर सदा का अजाब आता है। किसी को इस पूरे जो आयात का मजमुआ था आज हमने पढ़ के मुकम्मल किया, इन आयात के मजमुए को, पूरी सूरत तो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, किसी को कोई सवाल है तो वो चैट विंडो के ऊपर लिख करके पूछ सकती हैं, ठीक है। जब तक हम दूसरी 1 मिनट की गैप से हम दूसरी आयात शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بين آيات کے پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد معرفت مسائل، جیسے کہ قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے۔ تو ترجمہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن، جو کہ شیخ الہند کا لقب دیے گئے، اور یہ دار العلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے، ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ حضرت نے یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اس طرح سے کیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم رکھ نماز کو سورج ڈھلنے سے، سورج کے ڈھلنے سے، دلوک دلک سے نکلا لفظ ہے دلکن، اور دلکن کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف میلان ہو جانا، ڈھلک جانا، ٹھیک نا، کسی چیز کی طرف ٹلٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو لدلو کے شم سے، یہ یعنی ایک نان لیونگ تھنگ کے لیے ڈھل جانے کا، ڈھلک جانے کا لفظ استعمال کیا۔ پیچھے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طبعی میلان، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کا میلان ہو جانے کے لیے لفظ جو ہے وہ ترکن و الیہم استعمال کیا تھا، یہاں پہ ترکن و الیہم کا لفظ نہیں بلکہ لدلو کے شم سے، شمس کے ڈھلنے، ٹھیک ہے۔ تو نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، غسق، غسق اللیل، رات کی تاریکی، رات کی تاریکی، ٹھیک ہے، اندھیرا، رات جو ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، لیل شروع ہو جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دن ختم ہو گیا۔ یعنی رات کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ جب دن ختم ہو گیا، اور دن کی کیا ڈیفینیشن ہے جب رات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اندھیرا اور روشنی یہ رات کی ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دن میں بھی اندھیرا ہو سکتا ہے۔ ابھی دبئی میں بہت زبردست قسم کا سٹارم آیا تھا، تو جو بادل آئے تو دن کے 3:30 بجے جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ جیسے کہ مطلب رات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رات کے وقت جو ہے وہ آرٹیفیشل لائٹنگ کے ذریعے سے، کسی بھی اور طریقے سے، مطلب آرٹیفیشل طریقہ ہو سکتا ہے دنیا میں، آپ جو ہے وہ روشنی کر سکتے ہیں، تو روشنی تو رات کے وقت بھی ہو سکتی ہے اور اندھیرا تو دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اندھیرے کے لیے جو ہے نا وہ غسق کا لفظ استعمال ہوا، جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، यानी सूरह वक़ब के अंदर, सूरह हस, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सूरह फलक के अंदर, ठीक है। तो मैं पनाह मांगता हूँ गासिक की, यानी अंधेरे की, जब वो छा जाए, ठीक है। तो इला गसक लैल, कि रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो, लेकिन शुरू कहां से करो, लिदुलू के शम से, सूरज के ढलने के वक्त से शुरू करो और रात के अंधेरे तक जो है वो नमाज कायम करो। वह कुरआन अल फजर, और फजर के वक्त का कुरआन, ठीक है, फजर के वक्त का कुरान, इसकी तफसीर फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन कुरआन अल फजर काना मशहूदा, बेशक कुरान पढ़ना फजर का होता है रूबरू। ये तो शेख उलंदे का तर्जुमा है ना, हमें तो नहीं समझ में आएगा। तो बेशक कुरान जो फजर के वक्त का होता है, काना वो होता है मशहूदा, मशहूद के जिस जिसको ऑब्जर्व किया जाए, जिसको देखा जाए, जिसको जो सामने हो, जो सामने चीज होती है हम उसी को देख सकते हैं, पीछे वाली चीज को हम देख नहीं सकते, ठीक है। जब ही जो चीज हमने देखी होती है उसी की हम शहादत दे सकते हैं, ठीक है। तो मशहूद उसको देखा जाता है फजर के वक्त के कुरान को, क्या क्या मतलब देखा जाता है, इंशाल्लाह तफसीर में आएगा ये। वमिन लैली, और रात में से, मिन बाजिया के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बाज हिस्सा, ठीक है। तो रात का बाज हिस्सा, फतहज्जद भी, इसके साथ, यानी बिही में जो हा की जमीर है ये कुरान मजीद की तरफ पॉइंट कर रही है, ये प्रोनाउन है कुरान मजीद का, नाउन क्या है कुरान मजीद, इसका प्रोनाउन क्या है, ही। तो कुरान के साथ, बिही कुरान के साथ, फतहज्जद तहज्जुद पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे रात जागता रह कुरान के साथ, तहज्जुद पढ़ो कुरान के साथ, नाफिलतल लका, ये नफिल है, ये ज्यादती है तुम्हारे लिए, ज्यादती का मतलब तुम्हारे ऊपर ज्यादती नहीं है, तुम्हारे लिए ज्यादती है, ठीक है ना। किसी के ऊपर कोई चीज हो वो नेगेटिव माने में आ जाती है, और किसी के लिए कोई चीज हो तो वो पॉजिटिव माने में आ जाती है, अगर कोई अच्छी चीज है तो। जाहिर तहज्जुद की बात हो रही है, तहज्जुद तो अच्छी चीज होती है ना, तो ये नाफिला है आपके लिए, ठीक है। और नाफिल का मतलब, ये नफिल का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, यानी जो फर्ज है उसके बाद, ठीक है ना, जो कर्ज है उसके बाद आप किसी को उसका कर्ज अदा करें और साथ साथ कुछ हदिया भी दे दें, तो उसको नफिल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए नफिल है। आशा, उम्मीद है कि, करीब है कि, ठीक है। वैसे उम्मीद का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, आशा के लिए, अई यब आशा का, कि आपको खड़ा कर देगा रब का, आपका रब, ठीक है, आपका रब आपको खड़ा कर देगा, यानी आपको अता फरमाएगा मकामन महमूदन, महमूद मकाम, महमूद हम्द से निकला, हम्द तारीफ को कहते हैं, और इसका इसम मफ़ूल, यानी इसका जो है ना वो ऑब्जेक्ट टेंस बनेगा महमूद, समथिंग दैट इज प्रेज्ड, प्रेज वर्दी, ठीक है। मकाम महमूदा, बहुत ही तारीफ के लायक मकाम, ठीक है। उम्मीद है कि आपका रब आपको तारीफ के लायक मकाम अता फरमाएगा, ठीक है। अच्छा, वकुल, और कह दीजिए, रब्बी, ए मेरे रब, रब्बी में जब जब जेर लगा होता है ना, तो ये जेर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, बल्कि असल में क्या है, ये असल में या थी, याए मुतकल्लिम, रब्बी, बा के साथ याए मुतकल्लिम, मेरा रब, लेकिन लिखने में अरबों का दस्तूर ये रहा कि लिखने में वो याए मुतकल्लिम को हटा देते हैं और सिर्फ जेर लगा देते हैं, क्योंकि जेर से भी वही आवाज निकलती है जो कि या से निकलती है, ठीक है। तो शॉर्टन करना, शॉर्ट फॉर्म, ये बहुत जो है ना बड़ा अहम मुकाम रखता है ये अरबों के नजदीक, कि कोई चीज अगर कम तरीके से कही जा सकती है तो उसको कम अल्फाज में कहा जाए, ठीक है ना। ये जुबान की अच्छाइयों में से अच्छाई होती है, कि बहुत ज्यादा अल्फाज में बात ना की जाए बल्कि कम अल्फाज में बात कर दी जाए। उसी तरह लिखाई के अंदर भी जितना मुख्तसर लिखाई होगी उतनी ज्यादा अच्छी लिखाई कहलाएगी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की टर्म्स हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि मुख्तसर अल्फाज जो हैं वो हमेशा अच्छे ही हों। ठीक है, कुरान मजीद के तो मुख्तसर अल्फाज की अलग ही शान है ना, वो तो कुरान मजीद है ना, अल्लाह का कलाम है। लेकिन हम अगर मुख्तसर अल्फाज किसी ऐसे शख्स को कह देंगे जिसको के कुछ समझ में नहीं आ रही बात, तो फिर तो फायदा नहीं हुआ ना। तो फिर समझाने के लिए तो फिर उसको तफसीर करनी पड़ती है, यानी उसको खोलना पड़ता है, उसका बयान करना पड़ता है, और बयान के लिए ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसी तरह लिखाई के अंदर भी ऐसी लिखाई लिख दी जो पढ़ने वालों को समझ में ना आए, वो अपना सर खुजाता रह जाए, तो फिर फायदा क्या हुआ इस ऐसी लिखाई का। ठीक है, तो इस वजह से लिखाई के अंदर भी तफसील के साथ लिखाई के बाद समझ में आ जाए, तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसीशंस दिए जाते हैं कि आप किसके साथ ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपनी शान ये रखी कि अल्लाह ताला ने कम अल्फाज बयान फरमाए लेकिन साथ साथ बंदे पैदा फरमा दिए जो कि इस बात को समझाएं। ठीक है ना, हम तो बंदे पैदा नहीं कर सकते ना अपनी बात को समझाने के लिए, तो हमें जो है ना वो अल्फाज से ही बात समझानी पड़ती है। थोड़ा बहुत हम तैयार तो कर सकते हैं, ट्रेन तो कर सकते हैं, एजुकेट तो कर सकते हैं कुछ बंदे जो के जाकर के बात को समझाएं, लेकिन वो भी एक बड़ी गिरती पड़ती सी एक कोशिश होती है हमारी कि हम बंदा भी साथ साथ तैयार कर दें समझाने वाला। अल्लाह ताला तो यानी हम तो हमें तो खुद ही बात तफसील से करनी पड़ती है ना कि बंदे बंदे कहाँ से तैयार करेंगे भाई। ठीक है ना, अल्लाह ताला तो इस बात पे कादिर है ना कि अल्लाह ताला मुख्तसर अल्फाज में अपना कलाम बयान फरमाएं और साथ साथ बंदे पैदा फरमा दें जो के, और उनको सलाहियत भी पूरी की पूरी दे दें, उनको अकल समझ भी पूरी की पूरी दे दें, तालीम भी पूरी की पूरी दे दें कि भाई मेरा कुरान जा करके समझाओ अब तुम। ठीक है ना, तो अल्लाह ये काम कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, इस वजह से हमें तफसील में ही बात करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने वकुल रब्बी फरमाया कि कह दीजिए ए मेरे रब, अदखिलनी मुदखला सिद्क, मुझे दाखिल कर दीजिए, अदखिलनी मुझे दाखिल कर दीजिए, मुदखल दाखिल करना सिद्क सच्चाई के साथ। ठीक है ना, सच्चाई के साथ या बिल्कुल यानी जिसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना वो धोखे का इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल सच्चा दाखिल करना कि वाकई में दाखिल हो जाओ। ठीक है, वाकई का दाखिल करना, उर्दू जुबान में हम ये कह सकते हैं वाकई का दाखिल करना, ठीक है, झूठ मूठ में दाखिल ना करना बल्कि वाकई में दाखिल करना, मुदखला सिद्क, ए अल्लाह मुझे दाखिल कर दीजिए वाकई में दाखिल करना, सच्चा दाखिल करना, वा अखरिजनी मुखरजा सिद्क, और मुझे निकाल दीजिए, मुझे खारिज कर दीजिए, मुखरजा सिद्क, वाकई का खारिज करना। ठीक है ना, यानी मुझे कहीं दाखिल कीजिए, खैर की जगह पे दाखिल कीजिए तो पूरा पूरा दाखिल कीजिए, और कहीं से अगर आप मुझे निकालिए तो पूरा पूरा निकालिए, और कहां से निकालिए, बुरी जगह से निकालिए तो पूरा पूरा निकालिए। ठीक है, अच्छे तरीके से निकालिए, वो अखरिजी मुखरजा सिद्क वजअल, और इजअल, इजअल का मतलब होता है बना दीजिए ली मेरे लिए, इजअल ली मिन लदुन का अपनी तरफ से सुल्तानन नसीरा। सुल्तान कहते हैं, अच्छा लदुन कहते हैं पास, ठीक है ना, नियर, या बल्कि इन पोजेशन ऑफ का, आप लदुन का आपके पास, मिन लदुन का यानी आपके पास से, मिन लदुन का आपके पास से क्या बना दीजिए मेरे लिए आपके पास से सुल्तान। सुल्तान कहते हैं माइट, ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी वजह से जिसके पास मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, रेंजर्स होते हैं, हथियार होते हैं, उसको सुल्तान कह देते हैं, ये सुल्तान है भाई फलानी जगह के, क्योंकि इनके पास सुल्तान है, इनके पास ताकत है। नसीर, ठीक है, नसीर मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला, और नसीर ज्यादा मदद करने वाला। ठीक है, तो अपनी तरफ से ना मदद करने वाली ताकत मेरे लिए बना दीजिए, मुझे अता फरमा दीजिए, ये अल्लाह ताला से दुआ। क्या जबरदस्त दुआ कुरान में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सिखाई। ठीक है, कि आप ये दुआ मांगा करें, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन वअखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम किसी जगह दाखिल हुआ करते थे ना, सफर से किसी शहर में दाखिल होते थे, तो यही दुआ मांग, ये उन दुआओं में से एक दुआ है। तो हम भी ये मसनून दुआ मांगा करें, जब हम जहाज पे सफर कर रहे होते हैं और कहीं पे जहाज लैंड कर रहा हो, तो मसनून दुआओं में से ये एक मसनून दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत जबरदस्त मसनून दुआएं हैं किसी शहर के अंदर दाखिल होने की, और यानी नबी अलैहिस्सलाम के लिए, यानी क्या कहें, ये तो बच्चों के लिए हम कहते हैं दिल से दुआ निकलती है, नबी अलैहिस्सलाम के लिए तो हमारे रुए रुए से जो है वो दुआ निकलनी चाहिए, और शुक्रगुजारी होनी चाहिए कि आपसे सामने में अल्लाह ताला से ऐसे मांगना सिखाया, ऐसी ऐसी चीजें मांगना सिखाया। ठीक है, वकुल, और कह दीजिए, जा अल हक जहक अल बातिल, ए हक आ गया, द ट्रूथ, अल हक आ गया, वह जहकल बातिल, और जो अल बातिल था यानी जो पूरा का पूरा झूठ था ना, वो भाग गया, जहका या जहक भाग गया, इन अल बातिला काना जहूका, बेशक बातिल जो है वो तो है ही जहूक, बहुत ज्यादा भागने वाला, बहुत ज्यादा भागने वाला, लेकिन किससे भागने वाला, हक से भागने वाला, हक आएगा तो बातिल भागेगा ना, जब हक ही नहीं आएगा तो बातिल किधर क्यों भागेगा भाई, राइट? तो बातिल में तो भागने की सिफत है, हक में भागने की सिफत नहीं है, हक में तो आने की सिफत है, भागने की सिफत बहुत ज्यादा ये बातिल के अंदर है, लेकिन मसला सारा का सारा है कि हक आए तो बातिल भागे ना। हम जैसे लोगों के साथ तो मसला ये है कि हम हक ही नहीं लेकर के आ रहे होते, तो बातिल जो है वो भाग ही नहीं दे रहा। सही है, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، और هَمْ نُنَزِّلُ، هَمْ اُتَارْتَے ہیں، هَمْ نَازِلْ کرتے ہیں، مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے، اب یہاں پر جو من کا لفظ ہے نا، یہ بیانیہ لگتا ہے کہ قرآن میں سے جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ سارا کا سارا، مَا هُوَ شِفَاءٌ، وہ جو کہ شفا ہے، जो कि शिफा है, शिफा क्या चीज होती है, किसी बीमारी किसी कमजोरी को दूर करने वाली चीज, उसको शिफा कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है ना, शिफा किस चीज को कहते हैं, अक्सर हम जो है वो उसका तजुर्बा भी करते रहते हैं अपने घरों के अंदर। वह रहमतुन, और रहमत है लिल मोमिनी, ईमान वालों के लिए। ठीक है, तो यहां पर शिफा, कुरान की शिफा ईमान वालों के लिए, तो फिर वो जो यूनाइटेड किंगडम के हॉस्पिटल के अंदर जो सूरह रहमान की तिलावतें चल रही हैं और लोगों को शिफा मिल रही है, और भी बहुत सारे नमाज भी नहीं पढ़ता उसको भी शिफा मिल रही है, और कलमा भी नहीं पढ़ता उसको भी शिफा मिल रही है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में आजकल सूरह रहमान की तिलावतों से, है ना, रहमा सूरह रहमान थेरेपी अब तो बन चुकी, काफिरों ने भी अपने अस्पतालों में चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो खाली फिजिकल शिफा की बात हो रही है, फिजिकल शिफा, बाकी शिफा मिल रही होती है लोगों को, लेकिन वो जिस्मानी बीमारियों से शिफा, यहाँ पर रूहानी बीमारी से शिफा की बात हो रही है, और जिस्मानी बीमारी की भी शिफा, यहाँ पर कुरान मजीद में जिस्मानी बीमारी की शिफा तो है, लेकिन यहाँ पर इस सूरत के अंदर, इस आयत के अंदर, लिल मोमिनीन, तो मोमिनीन को तो दोनों चीजें मिलेंगी, और काफरीन को जो है ना वो सिर्फ जिस्मानी मिलेगी। ठीक है, अनलेस कि वो ईमान लाने का फैसला कर लें, तो फिर उनको भी जो है वो रूहानी शिफा भी मिल जाएगी। वला यजीद ज़ालिमीना इल्ला खसार, और गुना, और नहीं ज्यादा करता ज़ालिमीन को सिवाय खसारे। ठीक है, ये जो कुरान हम नाजिल करते हैं ना, ये ज़ालिमीन को खसारे में यानी नुकसान के अंदर ही बढ़ाता है, और किसी चीज में इनको नहीं बढ़ा रहा होता, यानी और कोई रूहानी फायदा इनको नहीं मिल रहा होता सिवाय खसारे के। अच्छा, आज की क्लास बड़ी टाइट हो रही है, फिर से चलो 6 मिनट रह गए। किसी को सवाल है तर्जुमे से मुताल्लिक तो पूछ लीजिए, खुलासे तफसीर तक हम शुरू कर लेते हैं कि आफ्ताब ढलने के बाद से रात के अंधेरे तक नमाजें अदा कीजिए, इसमें जोहर असर मगरिब इशा चार नमाजें आ गई। ठीक है, क्योंकि जो सूरज ढलना शुरू होता है ना, ये जवाल के बाद सूरज ढलता है और जोहर का वक्त शुरू हो जाता है, तो जोहर की नमाज फिर असर के अंदर और ढलता है, और फिर मगरिब के अंदर और ज्यादा ढल जाता है, ताकि गुरूब हो जाता है, तो मगरिब की नमाज भी इसके अंदर शामिल हो गई। और फिर इशा की नमाज जो है वो गसत लईल, गसत यानी जब अंधेरा पूरा हो जाता है तो इशा की नमाज का वक्त आ गया, जैसे कि हदीस में इस इजमाल की तफसील बयान कर दी गई है। ठीक है, अब एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या है वो हदीस से हमें पता चलते हैं, कुरान मजीद से हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चलता, कुरान मजीद में बस इजमाली, जैसे कि पीछे बात हुई थी ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सारी तफसील नहीं रखी, वरना तो हम म्यूजियम में रखते, और शायद म्यूजियम म्यूजियम तो फिर हम जाते हैं ना, 2 साल में एक दफा जाते हैं, तो हम शायद 2 साल में एक दफा जाकर कुरान मजीद को देख के आते। ठीक है, तो कुरान मजीद में इवन नमाजों की भी तफसील नहीं रखी कि किस वक्त पढ़नी है एग्जैक्टली, कब से लेके कब तक जो है वो टाइम रहता है, और कितनी रकतें पढ़नी है, उन रकतों के अंदर क्या पढ़ना है, सब का सब हदीस मुबारक के अंदर। ठीक है, खाली इजमाल तफसील का भी मसला नहीं, बल्कि आजमाने का भी मसला है कि कितने लोग जो है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बात मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हदीस जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बात है, और कुरान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। बहरहाल, और सुबह की नमाज भी अदा करें, बेशक सुबह की नमाज कुरान अल फजर, फजर बेशक सुबह की नमाज फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। ठीक है, तो मशहूद का जो लफ्ज है ना, उसकी तफसीर है ये कि फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। सुबह का वक्त चूंकि नींद से बेदार होने का वक्त है, जिसमें सुस्ती का खतरा था, इसलिए उसको अलग करके एहतमाम के साथ बयान फरमाया, और इसकी एक मजीद फसीलत ये भी बयान कर दी कि इस वक्त में फरिश्ते जमा होते हैं। उसकी तफसील हदीस से ये मालूम हुई कि इंसान की हिफाजत और उसके अमाल को लिखने वाले फरिश्ते दिन के अलग अलग, रात के अलग अलग हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लास जो है वो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वाले साहब माशाल्लाह इस वक्त हॉस्पिटल से वापस पहुंच रहे हैं, तो उनको नीचे रिसीव करने जाना है, तो यहाँ पे हमें क्लास अभी खत्म करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।